पृष्ठ 125 वर्तमान युग सामान्य परिचय। आज वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत काव्य का चलन बढ़ गया है। यह युग प्रबंध काव्य का नहीं है। आधुनिक लोगों में वह भावना नहीं रही है कि अपने चरित नायक के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व मिला सके। न वर्तमान युग में रामकृष्ण जैसे लोकोत्तर आकर्षण के व्यक्ति ही उत्पन्न किए हैं। अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट है। संभव है कि समय उनके उदार चरित्रों को अवतारी पुरुषों की सी स्वर्णिम आभा प्रदान कर दे, किंतु इस युग का बुद्धिवाद और स्वतंत्रवाद वीर पूजा के कुछ विरुद्ध है। वस्तुतः महाकाव्य में नायकत्व किसी धीरोदात्त उच्च कुलोद्भव व्यक्ति को ही मिल जाए, यह आवश्यक नहीं। आज के यथार्थवादी युग में वर्ग विषमता के परिहार के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि महाकाव्य का नायकत्व राम कृष्ण और गांधी से हटाकर गोदान के होरी के समीप आ जाए। उपन्यास से सामान्य नायक के समान ही महाकाव्य का नायक भी एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है, किंतु उसके चरित्र में कर्म सौंदर्य के स्पष्ट दर्शन हो। ख्यात चरित्र नायक इसलिए रखा गया है कि उसमें हृदय का साधारणीकरण सहज में हो जाता है। वह काव्य की प्रेषणीयता के लिए आवश्यक है। अभी हाल में श्री अग्रदूत जी का महामानव नाम का एक छोटा सा महाकाव्य निकला है, इसलिए आजकल के युग की आत्मा प्रबंध काव्य के विरुद्ध दिखाई पड़ती है। पुराने विषयों में नई समस्याओं का समावेश कर प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं, किंतु उनमें भी प्रगी तत्व पर्याप्त मात्रा में है और चरित नायक इतिहास प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र से वर्तमान युग का श्री गणेश होता है। भारतेंदु जी के गीत काव्य में दो धाराएं स्पष्ट हैं। एक तो विद्यापति चंडीदास सूर तुलसी मीरा द्वारा प्रतिष्ठित परंपरा की प्राचीन शैली की, जिसके अंग प्रत्यंग में उनके निजी आत्मनिवेदन की मधुरिमा झलक रही है। ऐसे पद स्फुट भी हैं और कुछ चंद्रावली नाटिका में मिलते हैं। देखिए पृष्ठ 126। प्रिय तो ही कैसे ही राखो छिपाए, सुंदर रूप लखत सबको यह कसक जी आए, नैनन में पुत्री करी राखो पलकन ओट दुराए, हीरे मैं मनहू के अंतर कैसे ले चुकाए, मेरे भाग रूप प्रिय तुमरो छीनत सौते हाय, हरे चंद जीवन घन मेरे छिपत न क्यों इत धाय। चंद्रावली। भारतेंदु जी का भक्ति संबंधी एक गीत लीजिए। जातन मन में रमी रहे तहां ज्ञान क्यों आवे। दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं, जिनमें उनके हृदय की करुणा का स्रोत उमड़ आया है। इनमें करुणा के उच्च स्वर में माधुर्य दबता गया है। इनमें कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता का पुट कुछ अधिक है। आबहु रोवहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। श्रीधर पाठक। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संधि काल के प्रमुख गायक पंडित श्रीधर पाठक हैं। उनके भारत स्तवन संबंधी गीत बड़े मधुर हैं। इस काल के गीत काव्य लेखकों का दृष्टिकोण बारी अधिक रहा। भारतेंदु में भक्ति युग के संस्कार बहुत प्रबल थे, वे धीरे धीरे कम हो चले। उनके द्वारा बोया राष्ट्रीयता का बीज पल्लवित हो चला था। पंडित श्रीधर पाठक द्वारा लिखे हुए भारत स्तवन संबंधी दो गीतों के यहाँ उदाहरण दिए जाते हैं। नीचे के गीत में उन्होंने गोस्वामी जी द्वारा किए राम स्तवन का अनुकरण किया है। सुख धाम अति अभिराम गुण निधि नौमि प्रिय भारतम, सुठी सकल जग संसेव्य शुभ थल सकल जन सेवार्तम, सुचि सुजन सुफल सुसस्य संकुल सकल भुवि अभिवंदितम, नित नवल सुरति सुदृश्य सुठी छवि अगली अवनी आनंदितम। नौमी भारतम। एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश लिया लीजिए। जय जय शुभ्र हिमालय श्रृंगा, करलव निरत कलोलिन गंगा, भानु ताप चमत्कृत अंगा, तेज पुंज तपेश, जय जय भारत प्यारा देश। भारत गीत। पृष्ठ 127। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के काव्य में राष्ट्रीयता का कुछ विशेष विकास हुआ है और वह चरित्र निर्माण तथा इतिवृत्तात्मकता की ओर अधिक अग्रसर हुआ। उस समय के गीत काव्य में प्राचीन गौरव गाथा गान हुआ, साथ ही सामाजिक व्यंग्यात्मक गीत और कुछ ईश्वर भक्ति प्रदान गीत लिखे गए, किंतु उसमें रसिकता और तन्मयता की अपेक्षाकृत कमी रही। अधिकांश में आर्य समाज की बौद्धिक एवं सुधारक प्रवृत्ति से अधिक प्रभावित रहे। पंडित नाथूराम शंकर शर्मा ऐसे गीतों में भी कुछ रसिकता का पुट दे सकते थे। राष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गौरव की भावना को प्रोत्साहन दिया था, उसके कारण भी उस समय के गीतों में भक्ति और भावुकता का पुट आ गया। गुप्त जी की भारत भारती इसका सबसे अच्छा नमूना है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारत भारती। अतीत खंड 6-15। गुप्त जी ने यद्यपि द्विवेदी युग में लिखना शुरू किया था, तथापि वे सदा ही समय के साथ कदम मिलाते हुए चलते रहे। उनकी झंकार में रहस्यवादी गीतों के दर्शन होते हैं। गुप्त जी के साकेत और यशोधरा नाम की प्रबंधात्मक रचनाओं में भी गीत मिलते हैं। साकेत में दोनों प्रकार के गीत पाए जाते हैं। सीता की संतोषमयी प्रसन्नता के भी गीत और उर्मिला के हृदय की वियोग वेदना से प्रसूत विरह गीत। यशोधरा के गीत नारी गौरव से पूर्ण है। चारों प्रकार के गीतों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। क, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे भीतर जाऊं मैं। झंकार। ख, जिन सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। साकेत अष्टम सर्ग। ग, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। साकेत नवम सर। घ, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। यशोधरा। पृष्ठ 128। छायावादी युग। सामान्य परिचय। गीत काव्य में अत्याधुनिक युग के अंग्रेजी लिरिक के सब गुण मिलते हैं। वे कविताएं आकार में छोटी हैं और एक एक हृदयोच्छ्वास के रूप में कोमलता एवं मधुरता से मंडित, निजीपन से परिपूर्ण तथा नवीन लाक्षणिकता, सौंदर्य सुषमा और नवीन भावनाओं से ओतप्रोत हमारे सामने आती हैं। इस युग को किसी अंश में स्वतंत्र युग भी कह सकते हैं। इसमें छंद के बंधन टूट गए और सायर सिंह और सपूतों की भांति हमारे कवियों ने भी पीटी हुई लकीरों से हटकर चलना सीखा। उन्होंने अपना नया मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग सुमन सौरभमय है। छायावाद और रहस्यवाद। द्विवेदी युग में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही। उसमें आर्य समाजी प्रभाव का कुछ अखड़पन भी था और साथ ही खड़ी बोली का खड़ापन ही अधिक सामने आया। श्रृंगार भी वर्ज सा रहा। यह रीतिकालीन अत्यधिक श्रृंगारिकता की प्रतिक्रिया थी। छायावाद में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीयता हृदय की कोमल भावनाओं को न दबा सकी और श्रृंगारिक भावनाएं एक उन्मुख उन्नत रूप में प्रकाश में आई। श्रृंगार का मानसिक पक्ष प्रबल हुआ और उसकी सारभूता कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया। वह कोमलता हमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक मिले। मानवीय व्यापारों में संघर्ष, कटता और विफलता दिखाई दी। सरकार साम्राज्यवाद की रूढ़ियों में ग्रस्त थे और समाज धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बना हुआ था। बेचारे नवयुवकों को दोनों ओर से निराशा का सामना करना पड़ा। उनके केवल दो शरण स्थल थे, प्राकृतिक सौंदर्य और चराचर में व्याप्त परम सत्ता जो सांप्रदायिकता की संकुचित रूढ़ियों से परे थी। सरकार और समाज से तिरस्कृत होने के कारण उनकी वैयक्तिकता उभार में आई और स्वतंत्र भावना जागृत हुई। जहां कबीर के प्रेमास्पद विश्वात्मा के प्रतीक राम थे, वहां आधुनिक रहस्यवाद में उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, किंतु वह निर्गुण ही है। कबीर का रहस्यवाद हठयोग की साधना में साधना से मिश्रित है। आजकल के रहस्यवाद में केवल मानसिक आत्मसमर्पण है, वह इतना अनुभूति प्रधान भी नहीं है और न उसमें कबीर अथवा मीरा की सी दृढ़ता है। आधुनिक रहस्यवाद में जिज्ञासा और कल्पना अधिक है। उनके भावोद्गार गीत लहरी में बह उठे और छायावाद तथा रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुई। जीवन की बाहरी शुष्कता के अंतस्थल में बसने वाली सौंदर्य सुषमा को बाहर लाकर उसको एक तरस मधुरावेश मई कोमल कान पदावली में अभिव्यक्त करने की ओर हमारे नव युवक कवि अग्रसर हुए। छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में स्थूल दृश्य की उपेक्षा है, बहिर्मुखी की अपेक्षा वे अंतर्मुखी अधिक होते हैं। इन गीतों में बाह्य प्रकृति का चित्रण भी आंतरिक रूप से ही होता है। प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उसको मानवीय भावों से अनुप्राणित देखा जाता है। इसमें वस्तु को कटी छटी सीमाओं में प्रश्न 129 न देखकर उसका वायवीकरण कर दिया जाता है। झरना पानी का प्रवाह मात्र नहीं रहता है, वरन गहरी बात कहता सुनाई पड़ता है और किरण भौतिक आलोक रेखा न रहकर विकल विश्व वेदना की द्योति बन जाती है। यह प्रकृति और मानव का एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर आश्रित है। प्रकृति पुरुष का विराट शरीर है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा। मनुष्य का शरीर प्रकृति का ही अंश है और उसकी आत्मा का व्यापक विश्वात्मा के से संबंध है। कैवर पंत की नित्य जग नाम की कविता में यह भावना काफी स्पष्ट है। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधा भास, तरल जलनिधि में हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास, वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास, अचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास। आधुनिक कवि पंत। इसी नाते भारतीय कवि मनुष्य और प्रकृति में आदान प्रदान मानता आया है। पहले महायुद्ध के बाद भी भौतिकवादी सभ्यता के दिवालियापन ने शिक्षित समुदाय का नेत्रोन्मीलन कर दिया था। लोग अध्यात्म की ओर झुक चले थे। छायावाद की वही अंतर्मुखी प्रवृत्ति रहस्यवाद में और गहरी तथा मुखरित हो जाती है। प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन की के एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद की एक विशेषता है और उसके मूर्त की अमूर्त से तुलना करने वाले अलंकार विधान में जैसे बिखरी अलके जो तर्क जाल लहरों के लिए इच्छाओं से असमान तथा मानवीकरण प्रधान लाक्षणिक प्रयोगों में परिलक्षित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनुभूतिमय निजी संबंध की ओर अग्रसर होती है, तभी छायावाद रहस्य में परिणित हो जाता है। यह रहस्यवाद की प्रवृत्ति इस युग की ही देन नहीं है, वरन कबीर जैसी आदि में इसका बाहुल्य था। रहस्यवाद शब्द में कुछ श्रृंगारिक रूपक और कुछ नश्वर और अनश्वर के संबंध भी की अभिव्यक्ति विषयक अस्पष्टता और अनिर्वचनीयता की ओर संकेत रहता है। रहस्यवाद के प्रकार। रहस्यवाद कई प्रकार का होता है, उसमें नीचे के प्रकार मुख्य हैं। दार्शनिकता प्रधान रहस्यवाद जैसे कबीर दादू प्रसाद निराला आदि का। कबीर दादू आदि में अनुभूति की मात्रा कुछ अधिक थी, दर्शन में कोरा तर्क रहता है और दार्शनिक रहस्यवाद में तर्क कम किंतु आश्चर्यमयी जिज्ञासा और एकीकी पृष्ठ 130 अभिलाषामयी भावुकता अधिक रहती है। दाम्पत्य प्रेम और सौंदर्य संबंधी रहस्यवाद जैसा कबीर और मीरा का कबीर का आलंकारिक था और मीरा का वास्तविक और निजी किंतु कबीर में अनुभूति का अभाव न था। साधनात्मक रहस्यवाद इसमें योग और कर्मकांड की साधना का प्राधान्य रहता है जैसे गोरख कबीर आदि का और कुछ प्राचीन तांत्रिकों महायानी बौद्धों और भक्तों का। भक्ति और उपासना संबंधी रहस्यवाद जैसे सूर तुलसी का। इस प्रकार के रहस्यवाद में अद्वैत की अपेक्षा सान्निध्य सुख को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि शुक्ल जी ने तुलसी में रहस्यवाद नहीं माना है और उनमें व्यक्ति ईश्वर की भक्ति की स्पष्टता अधिक बतलाई गई है, फिर भी व्यक्ति ईश्वर या अवतार भी पूरा ज्ञेय नहीं होता है और उसके संबंध सुख की अनिर्वचनीयता रहती है। कृष्ण भक्तों में तो यह रहस्य भावना सखी भावना और दाम्पत्य भावना का रूप धारण कर लेती है। प्रकृति संबंधी रहस्यवाद इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की अनुभूति की जाती है। इस प्रकार के रहस्यवाद और छायावाद में बड़ा सूक्ष्म अंतर रह जाता है, उसको यहाँ व्यक्त कर देना आवश्यक है। प्रकृति के संबंध में छायावाद और प्रकृति रहस्यवाद दोनों का ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। छायावाद में व्यक्ति की भावना अधिक रहती है, वह उसको व्यक्ति का रूप देना चाहता है, किंतु प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति को समष्टि रूप में लेकर उसके दर्पण द्वारा अपने प्रियतम की छाया देखता है। प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति के अवगुंठन में छिपी हुई सत्ता को झांक कर देखना चाहता है, उसमें एक विशेष विराट भावना रहती है। और छायावाद में सौंदर्य की भावना का प्राधान्य रहता है। दोनों में एक प्रकार की अंतर्दृष्टि रहती है। छायावाद में अंतर्दृष्टि के रहते हुए भी आरोप की भावना रहती है। प्रकृति स्वयं ही व्यक्ति बनाई जाती है और उसमें मानवीय भाव देखे से जाते हैं। प्राकृतिक रहस्यवाद में उसके द्वारा व्यक्त किए हुए परम पुरुष के दर्शन की चेष्टा रहती है। छायावाद में कल्पना का प्राधान्य होता है और प्राकृतिक रहस्यवाद में भावना और अनुभूति का आधिक्य होता है। विभिन्न मत। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद को छायावाद का विषयगत पक्ष माना है। शुद्ध छायावाद में विशेषताओं पर अधिक बल रहा और उस शैली में लिखे हुए रहस्यवाद के बाहर के शैलीगत विषय भी आ जाते हैं। शुक्ल जी छायावाद का संबंध अंग्रेजी शब्द फनस माता अर्थात छायाभास से मानते हैं। प्रसाद जी ने इसका संबंध मोती में रहने वाले तरलता से, जिसे संस्कृत के पारिवारिक शब्दावली में छाया कहते हैं और साधारण भाषा में आप कहते हैं, जोड़ा है। वे लिखते हैं प्रश्न 131 मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छिति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था। काव्य कला और निबंध अंत में वे इसका संबंध वक्रोक्ति और ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन परंपरा के अंतर्गत ले आते हैं। अग्नि पुराण में छाया का प्रयोग शोभा के अर्थ में हुआ है। यह काव्य महती छाया मगरी नूहला त्य सौगुड़ा है, अर्थात जो काव्य में अत्यधिक छाया व शोभा को उपकृत करता है अर्थात लाभ पहुंचाता है वह गुण है। प्रसाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के लिए नई नहीं है, हमको यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्वतंत्र रूप से गुप्त जी को मुकुटधर पांडे की कविताओं से हो गया था, तथापि इसको विशेष संबल अंग्रेजी और बंगला से मिला, किंतु उसने उस संबल सामग्री को भारतीय रूप दे दिया है। रहस्यवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद की दूसरी मंजिल माना है। छायावाद के कवि सौंदर्य का केवल रहस्यवादक के रूप में रहता है। रहस्यवाद में आत्मनिवेदन की भावना भी आ जाती है। इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है। उपनिषदों में जीव और परमात्मा के संबंध में दाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है। छायावाद और रहस्यवाद की चाहे जो कुछ उत्पत्ति हो, उनमें भावना का प्राधान्य होने के कारण वे गीत काव्य के उपयुक्त विषय हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण करती हैं। आज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह इन सब की विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने परा विद्या की अपरार्थिकता ली, वेदांत के अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संबंध की दृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलंब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदय में और हृदय को मस्तिष्क में बना सका। सांध्य गीत की भूमिका। एक आक्षेप। छायावाद और रहस्यवाद में संघर्ष में संसार से हटकर किसी सुरक्षित सौंदर्य लोक में बैठकर देखने की सुख स्वप्न पलायनवादी प्रवृत्ति है, जैसे ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। पृष्ठ 132। निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे लहर। छायावाद में यह प्रवृत्ति अवश्य है, किंतु यह एक आवश्यक विश्राम के रूप में आती है। जिन कवियों में यह सौंदर्य शीलन चीर विश्राम नहीं बन जाता है, वहाँ यह जीवन के संघर्ष के लिए तैयारी का काम देता है। छायावाद की सौंदर्य अनुभूति जीवन को सरसता प्रदान कर जीवन योग्य बनाती है। इसके अतिरिक्त छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। एकात्मवाद मानव जीवन के विभिन्न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यापकता दिखाकर परोपकार के लिए एक दृढ़ आधार भूमि उपस्थित कर देता है। केवल भौतिकवाद की भूमि में साम्यवाद और परोपकार की भावनाएं नहीं पनप सकती। यही छायावाद का लोक पक्ष है, किंतु वह दुंदुभी नाद के साथ घोषित नहीं किया गया है, वरन व्यंजित रखा गया है। निराला जी की विधवा, मेरा मतलब निराला जी लिखित विधवा शीर्षक कविता से है और उनके भिक्षुक में पर्याप्त करना है। ऐसी कविताएं इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि छायावाद में दलितों की उपेक्षा नहीं की गई है। छायावाद की अभिव्यक्ति का अपना ढंग है, वह उपदेशात्मक नहीं है, वरन व्यंजनात्मक है। निराला जी स्वयं लिखते हैं, सूक्तियां उपदेश मैंने बहुत कम लिखे हैं, प्रायः नहीं, केवल चित्रण किया है। उपदेश को मैं कवि की कमजोरी मानता हूँ। छायावाद को की कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है, उसका भी मूल्य कम नहीं है। छायावाद जीवन संग्राम में प्रवृत्ति के प्रति उदासीन नहीं है। स्वयं प्रसाद जी में जीवन संग्राम में प्रवेश करने का उद्बोधन मिलता है। देखिए, अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो, करलव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, जागो अब जीवन के प्रभात। लहर कामायनी में भी श्रद्धा मनो को प्रवृत्ति की ही ओर ले जाती है और नैराश्य तथा अकर्मण्यता की निंदा करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद में बुद्धिवाद की अपेक्षा भावुकता को अधिक स्थान दिया है। यह भावुकता कर्म को भी गति देती है। छायावाद ने वासना के कदर्म से विनिर्मुक्त सौंदर्य का शुद्ध निर्मल मान समय रूप दिया है और उसी के साथ हमारा ध्यान विश्व में व्याप्त एक चेतनात्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया। पृष्ठ 133। इसके अतिरिक्त भाषा को नए अलंकार और नई शैली देकर उसका परिमार्जन किया और खड़ी बोली की रुक्षता और शुष्कता दूर कर अपने गीतों द्वारा साहित्य, संगीत और कला का सुंदर समन्वय किया। वर्गीकरण। छायावाद रहस्यवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण में अनेकों गीतों की सृष्टि हुई है। उनकी मूल विषयगत प्रवृत्तियों के आधार पर उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। प्र प्रकृति संबंधी गीत छायावाद ने प्रकृति को नए दृष्टिकोण से देखा है। उसमें मानवीय श्रृंगार और हर्ष विषाद प्रेम करुणा आदि मानवीय भावों एवं उनसे प्रेरित अश्रु पुलक हास नर्तन आदि अनुभवों का आरोप किया है। इसमें कुछ प्राकृतिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलित हैं। जीवन मीमांसा संबंधी गीत छायावाद रहस्यवाद में भावुकता का आधिक्य होते हुए भी बुद्धि तत्व का अभाव नहीं है। इसमें जीवन के आदर्श तथा आशा निराशा एवं सुख दुख की मीमांसा के गीत गाए गए हैं। आध्यात्मिक विरह मिलन के गीत इस प्रकार के गीत रहस्यवाद की विशेष संपत्ति है। आजकल के लोगों ने भी परस्पर सत्ता के साथ भावात्मक संबंध स्थापित कर अथवा उसकी कल्पना कर उसके साथ मिलन के सुख और विरह की वेदना के गीत गाए हैं। इनमें विरह गीत अधिक है। गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत छायावाद में राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, किंतु उसकी राष्ट्रीयता एक कोमल प्रकार की है। उसमें आदर्शों और उदात्त भावनाओं का प्राचुर्य है। उसमें करुणा है किंतु संघर्ष और विद्रोह नहीं। उस पर गांधीवाद का अधिक प्रभाव है। लौकिक प्रेम गीत छायावाद ने प्रेम और श्रृंगार का बहिष्कार नहीं किया, वरन उसका परिमार्जन किया है। वे लोग उसके मानसिक पक्ष को अधिक उभार में लाए हैं। उसके सौंदर्य वर्णन में स्थूलता नहीं वरन एक वायवी दिव्यता है, और प्रेम आक्रमण के रूप में न रहकर आत्मनिवेदन का रूप धारण कर लेता है। छायावादी प्रेम गीतों के अंतस्थल में चाहे शारीरिकता हो किंतु उस पर एक भव्यता और दिव्यता का आवरण रहता है। प्रकृति चित्रण के गीत अब छायावाद और रहस्यवाद के अंतर्गत एक एक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। कविवर प्रसाद जी द्वारा अंकित प्रातःश्री का एक मनोहर चित्र उपस्थित है। इसमें उषा नगरी और लतिका का मानवीकरण करके उन्हें जल भरती हुई नायिकाओं के रूप में दिखाया गया है। बीती भावरी जागरी अंबर पनघट को डुबो रही पृष्ठ 134 तारागढ़ उषा नगरी खक कुल कुल सा बोल रहा किसने का अंचल डोल रहा लोया लतिका भी बहलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी लहर प्रसाद जी की लहर शीर्षक कविता में छायावादी प्रवृत्तियों का अच्छा अध्ययन किया जा सकता है। देखिए उठ उठ री लघु लघु लोल लहर करुणा की नव अंगराई सी मलया नील की परछाई सी इस सूखे तट पर छिटक छहर शीतल कोमल चीर कंपन सी दुर्ललित हठीले बचपन सी तू लौट कहाँ जाती है रे यह खेल खेल रे ले ठहर ठहर उठ उठ गिर गिर फिर आती नरती पद चिन्ह बना जाती सिकता में रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर तू भूल नरी पंकज वन में जीवन के इस सूनेपन में ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक आचूम पुलीन के विरस कधर लहर इसमें जीवन के सूनेपन और विरसता की करुणापूर्ण कसक छिपे हुए है, जिसको वह करुणा के अंगड़ाई जैसी मधुमय स्मृतियों की सूक्ष्म मानसिक लहरों से सरस बनाना चाहता है। इसमें जड़ चेतन का एक अपूर्व मिश्रण है और इसकी भाषा लाक्षणिकता से पूर्ण है। मूर्त लहर का उपनाम बनाया है करुणा को और उसकी अंगड़ाई का लाक्षणिकता द्वारा एक सूक्ष्म और मूर्त चित्र बना दिया है। नव शब्द से उसके उसी समय जागृत होने और अस्तित्व में आने का भाव है। मलयानिल की परछाई में स्थूल लहर को अत्यंत सूक्ष्म बना दिया गया है। मलयानिल वैसे ही सूक्ष्म है, उसकी परछाई और भी सूक्ष्म हुई। इसमें छायावादी वायवीकरण शाब्दिक अर्थ में भी चरितार्थ होता है। दुर्ललित हठीले बचपन सी में भाषा की चित्रोपमता पृष्ठ 135 दिखाई देती है। मचलते हुए बालक का चित्र सामने आ जाता है। लहर की तरलता सिकता में भी संक्रमित हो जाती है। पंकज वन संपन्नता समृद्धि और हास विलास का प्रतीक है, जो कवि से दूर हो गया है। पुलीन का विरस अधर कवि की वर्तमान दशा का परिचायक है। लहर प्रेम की लहर हो सकती है जो स्वयं प्यार और पुलक से भरी हुई है और कवि में भी पुलक का संचार कर देगी। अब कविवर निराला की संध्या सुंदरी का शांत शब्द और स्वर्णिम आभा में चित्र देखिए। दिवसा वसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास पिलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक अपरा। इस कविता में छायावाद की अस्पष्ट धूमिल अंतरिक्ष में घुल जाने वाली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इसका संगीत भी ऐसा ही है मानो धीरे धीरे उतार हो रहा हो। निराला जी ने अपनी कला की व्याख्या में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ब्रजभाषा की स म ब ल वाली प्रकृति को अपनाया है। संस्कृत की श ण व की प्रकृति को कालिदास तो अच्छी तरह निभा सके हैं। पंत जी ने भी उसको अपनाने का प्रयत्न किया है, किंतु वे स्वयं ब्रजभाषा की स ब प्रधान कोमलता के पक्ष में ही हैं। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद का उदाहरण देते हुए दिखलाया है कि वे साकार को ही मुख्यता देकर कोमलता और सरलता ला सके हैं। देखिए, धीरे समीरे यमुना तीरे बस्ती बने बनमाले, किंतु निराला जी भी स का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं। निराला जी के प्रकृति संबंधी गीतों में रूपक छिपा रहता है। प्राकृतिक दृश्यों में नायिका का रूप उतर आता है। सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। पृष्ठ 126। आवृत सरसी और सरसिज उठे, केशर के केश कली के छुटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का